That's it till that. हमारा जीवन सफल हो
गया।
अब इधर तो धन कौन हुआ और फिर इधर कृष्ण ने उसे अपने को कृतार्थ अपने जीवन आज हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। बताओ तो श्रीमती राधिका जी कैसी है, उनकी महिमा कैसी है। इसलिए कहते धन्य धन्य पौने में कृतार्थमानी
जोगिंद्र
दुर्गम गतिर मधुसूदनों की। अरे वैसे जोगिंद्र ब्रह्मा और शंकर इत्यादि जो जोगिंद्र हैं, उनके लिए भी उनकी गति जिन कृष्ण की गति अगम कभी नहीं अनुभव करने वाले ऐसे जोगिंद्र जोगिंद्र गति मधुसूदनों की तस्या ऐसे श्रीमती राधिका जी को मैं अपना रघुनाथ दास गोस्वामी तो यहाँ तक कहते हैं जो कि कोई नहीं कह सका, कोई भी नहीं कह सका उसके पहले। तो उनके गुरु जो हैं रूप गोस्वामी और यही दोनों अधिकारी हैं इसके कहने के, और कोई भी नहीं कहेगा। ललिता जी भी नहीं कहेंगी, विशाखा जी ऊपर से तो रोष कर देंगी ये दोनों, किंतु ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि ये पाल्य दासी हैं ये दोनों। तो ये कह रहे हैं आशा भरी अमृत सिंधु मय कथंचित कालो मया कि गमिता किल सांप्रतम संचेत कृपा मई विधा नई बकिन में प्राणी बखारिना कहते हैं आशा भरे अमृत सिंध मये कथंचित। मैं यहाँ पर वृंदावन गोवर्धन के पास में राधा कुंड के तट पर बड़ी आशा से दीमक अपना जीवन ये मैं व्यतीत कर रहा, बड़े कष्ट शस्त्र से जीवन का निर्वाह कर रहा। किसलिए आशा भरी अमृत सिंधु, इच्छा थी अमृत सिंधु पान करने की, अमृत में की सिंधु में निमज्जित होने की बड़ी भारी लालसा थी। अमृत सिंधु क्या, अमृत सिंधु श्रीमती जी की आपकी सेवा, ये है यहाँ पर अमृत सिंधु। जैसे पहले दिन मैंने बतलाया था स्वरूप मंजरी करा चित पाद पद्म गोष्ठन पुजार चित मिताया हामोद कनक गौरी पदार गंदम संवाहना सन कई ऐसे ही ऐसे। हाँ मेरा ऐसा सौभाग्य होगा आपको तेल मर्दन करके स्नान कराऊंगा, स्नान कराऊंगी दान ही स्नान करने के बाद में आपको चोटी को संभालूंगा। मेरा को वैसा सौंदर्य सौभाग्य होगा वो सिंदूर की जो बतिया होती है सिंदूर ले करके और सोने के एक सलाका से आपकी मांग को भर देंगे और फिर दर्पण दे करके देखेंगे कैसा सुंदर हुआ है, कस्तरी बिंदु दे देंगी। ये सब अमृत सिंधु है, ऐसे ही आशा लेकर के मैं यहाँ पर बैठा, किंतु आज तक आपकी कृपा हमारे ऊपर में नहीं हुई। आशा भरे अमृत सिंधु मय कथंचित कालो मया की गमिता, कालो मया की गमिता वो काल बहुत काल चला गया, अब आशा मुझे नहीं दिखती। यदि आपकी कृपा हो तो अभी हो जाएगा, किंतु आप कृपा नहीं कर रही हमारे ऊपर। यदि आपने कृपा नहीं किया तो अंतिम नहीं इस प्राण की जरूरत क्या है, ये शरीर से प्राण निकल जाए मैं मर जाऊं। ब्रजवास भी मेरे लिए अत्यंत दुखपूर्ण हो रहा है, ब्रजवास भी नहीं करना चाहता, राधा कुंड पे भी नहीं मैं रहना चाहता, यहां तक कि और तो बात क्या है, कृष्ण से भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं, बताओ। इसलिए दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता, यही लोग को कर सकते हैं जो उनकी खास पाल्य दासियां हैं, जिनको उन्होंने बचपन से ही पालन करके रखा है, ऐसे ही ये हमारे गोस्वामी होती है। अच्छा, इन श्लोकों में कभी उनको प्रणाम किया कि नहीं? हे राधिका जी, आपके चरणों में मैं प्रणत होकर के आपको प्रणाम करती हूँ, कहीं है कहीं देखा? कुछ भी नहीं। अपनी सखी है उनको क्या प्रणाम करें? इसलिए यहाँ पर नमस्ते स्तु दाम ने पहले दाम को प्रणाम किया, फिर इसके बाद में उदर को प्रणाम किया, और इसके बाद में नमो राधिकाई राधिका जी को प्रणाम किया, और फिर अनंत लील अनंत लीलाओं को प्रणाम किया, और अंत में कृष्ण को प्रणाम किया। प्रणाम की भरमार देखते हैं। इसलिए पहले तो ये दास्य रस के सेवक, और दास्य रस में भी कैसे हैं, कुछ ऐश्वर्य की भावना इसमें भरी हुई है, ऐश्वर्य भाव भी है। वो समय का तो संग हुआ नहीं इनका, उस समय तो कोई स्वामी लोग थे नहीं, महाप्रभु जी भी प्रगट भी नहीं थे। महाप्रभु जी की विशेष कृपा से, उनके कृपा पात्रों की विशेष कृपा से उनका थोड़ा भी यदि संग हो गया, उनके ग्रंथों के माध्यम से अथवा श्रवण के माध्यम से जैसे भी हो गया, तब तो ऐसी लालसा उत्पन्न हो जाएगी जैसा कि हमने ये सब कहा। अन्यथा किसी के अंदर में ऐसी लालसा कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकती। जब उत्पन्न हो तो डर के मारे थरथराएगा। जो कृष्ण और कृष्ण के रहते हुए मैं राधिका जी की ऐसी वंदना करूंगा और उनको ऐसे कहूंगा, ऐसा कर नहीं सकता। इसलिए ये यदि ये कहना भी राधा जी को प्रणाम भी कर रहे हैं तो किस लिए प्रणाम करते हैं? कि कृष्ण के चरणों में बाल गोपाल का हमको दर्शन मिल जाए, इसलिए कह रहे हैं। नमोनम तलीलाय देवाय कुभ्यम। यहाँ पर सनातन गोस्वामी की भी टीका हम लोग थोड़ा सा देखें, ये तो हमने और सब जगहों से लेकर के कहा। व्यापक असीम भगवान का बंधन कभी संभव नहीं, तथापि भक्त वात्सल्य के कारण वो बंधन को उन्होंने स्वीकार किया। अच्छा, यहाँ तो कह रहे हैं ना कि मैयारी मुझे तू मत बांध, कह रहे हैं ना, और रो रहे हैं, और सचमुच उनकी इच्छा है कि मैया हमको मत बांध। किंतु यशोदा मां जी का कष्ट देख करके उन्होंने बंधन स्वीकार कर। किंतु कुछ ऐसी अवस्था भी है जब कृष्ण कहते हैं कि हमको बांध दो, जो हमको खूंटे से बांध दो, ललिता विशाखा जी से इशारा करके अपने को बंधवाते हैं। वो खूंटा क्या है?
श्रीमती राधिका जी
इशारा करते हैं कि नहीं कि हमारा गठबंधन जोड़ दो और हमको बांध दो, राधा जी के से बांध दो। उसके लिए स्वयं लालायित होकर के, यहाँ पर लालायित नहीं है बंधन के लिए यशोदा जी वाला, और वहां पर लालायित है बंधन के लिए, हमको वो इशारा करके चाहते हैं कि हमको कोई बांध दे। यहाँ तक कि ललिता जी से भी ऊंचा गांव में और काम्यबन में भी इंदुलेखा के साथ में और सब सखियों का उल्लेख है गोविंद लीलामृत इत्यादि, उनसे बंधने के लिए लड़ाई होती है और वो क्या करती हैं, यदि किसी ने बांधा तो जबरदस्ती खोल करके फेंक देती हैं। वो बंधन में नहीं आना चाहती तो देखो जो कैसे कृष्ण और इनका प्रेम कृष्ण के प्रति कैसा है। इसलिए बार बार प्रणाम करते हैं। पहले उन्होंने दान को नमस्कार किया, इसके बाद में पुत्र को, इसलिए कि वो अलग से रश्मि है और उधर अपना अंग है, इसलिए दान को पहले किया और उधर को पीछे, मैंने उधर श्रेष्ठ है। इसलिए एक बात यहां पर इन्होंने बतलाया है, राधिका की रूही संज्ञा, आराधना के द्वारा कृष्ण की जो आराधना सबसे श्रेष्ठ करता है वो कृष्ण का आराधक सबसे श्रेष्ठ है। तो वो सबसे आराधना कौन करता है, यदि आराधना करती है श्रीमती राधिका, तो वो आराधना शब्द से मानो उसकी व्युत्पत्ति से ये राधिका नाम हुआ। जबकि वो कृष्ण के बाम अंग से निकली तो धा दौड़ती है धावती, और रामाने अनुराग के द्वारा जो कृष्ण की तरफ में दौड़ करके उनकी जो आराधना करती है, इसलिए उनका नाम आराधना। किंतु यह बात ठीक नहीं है, कुछ अंशों में राधिका नाम ये कहते हैं सनातन गोस्वामी ये रूही संज्ञा, अतः रूह बने होता है मूल रूह। राधिका जो कुछ करती हैं उनका नाम है आराधना, राधिका से शब्द आराधना निकला है, न कि आराधना से राधिका। यदि हम आराधना से राधिका शब्द लेते हैं तब तो शब्द पहले हो गया, राधिका जी ये सबकी मूल है, इसलिए राधिका जो शब्द है ये रूढ़ है, उसी से ही आराधना शब्द निकला, न कि आराधना से आराधना शब्द। इसलिए राधिका जी आपकी नित्य प्रिया है। हमारे गुरु जी इसकी कुछ टीका में बतला रहे हैं, नमोनंत लीलाय देवाय तुभ्यं, नमोनंत लीलाय, लीलाय नमः, कृष्णाय नमः, राधाय नमः होता है ना, तो यहाँ पर लीलाय नमः और फिर देवाय नमः का दोनों को ले लो। तो यहाँ पर लीला को नमस्कार कर रहे हैं, कौन, दामोदर लीला को जो अभी तक लीला हुई, और राधिका जी को जो प्रणाम किया है ना, तो इसलिए उनकी कुछ विशेष इच्छा भी है, बतला रहे हैं। अनंत शब्द से जिस लीला का अंत नहीं है उसको अनंत लीला कहते हैं, अनंत लीला। एक रात्रि में ब्रह्मा की रात्रि भी आ गई और उस लीला में, ब्रह्मा की रात्रि में जो एक ब्रह्मरात्रि की लीला हुई उसमें समस्त लीलाएं आ गई, विशेष करके गोपियों वाली समस्त लीलाएं आ गई, गोविंद लीलामृत इत्यादि में जो अष्टकालीय लीला और जो उसमें जो 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 क्रियाएं होती हैं, विलास होता है, सब एक लीला के अंदर में प्रविष्ट की गई, इसलिए उसको अनंत लीला कहते हैं, रास लीला को ही, जहां अंत नहीं व शेष नहीं, नित्य अशेष असंख्य लीला शब्द के द्वारा वही को समझना चाहिए। अतः लीड शब्द में व्युत्पत्ति ली शब्द का अर्थ आलिंगन करना, फिर ली ल शब्द का अर्थ है ग्रहण करना लेना, ली ल आलिंगन लेना देना लीज शब्द का अर्थ। सूत्रां लीज शब्द के द्वारा गोपियों के आलिंगन इत्यादि जिस रास लीला में होती है उस रास लीला को स्पेशली ये कह रहे हैं, इसलिए अनंत लीला कहने से टीका में सनातन गोस्वामी ने गोकुल विषय का सर्वापी लीला लीलोच्छिष्टा तस्यैचा नमति विभाव, सनातन गोस्वामी ने यही कहा करके मधुरेण समापयति इस लीला को समापन किया। यहाँ पर राधिका जी के महत्व को अधिक स्पर्श नहीं किया, संक्षेप में उन्होंने मधुरेण समापयति इति के वजह से किया है। श्रीमद् भागवत में इन सब लीलाओं का वर्णन सब किया गया है, विशेष करके हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने मन शिक्षा में मदीशानाथे प्रजपति न चंद्र प्रजोष्कम नाथे इत्यादि श्लोकों में दिया है। हम लोग के गोस्वामी लोग राधा पक्षी होते हुए भी ऐसा मत समझे कृष्ण से कुछ विरोध है, गड़बड़ हो जाएगा। कृष्णमयी राधा है और राधामयी कृष्ण है, दोनों को साथ में लेना चाहिए। प्राण मोर राधा कृष्ण जुगल किशोर, सब समय यही भाव रखना चाहिए। तब कृष्ण गोचारण में जाएंगे हम नहीं जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, जहाँ राधिका जी हैं वही रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे। कई राधिका दासी का अभिमानी हम लोगों में होना चाहिए। दामोदर अष्टक इत्यादि बात करने का भी यही है, जो राधा जी के वशीभूत हैं और अपने अधिकार के अनुसार में कोई अर्थ ले, हम लोग इसी अर्थ को लेंगे कि जो राधिका जी के द्वारा उधर से बंधे हुए हैं उनके वशीभूत हैं, ऐसे राधा और कृष्ण जुगल के हम लोग चरणों में अपने को न्योछा, राधा जी हमें अपनी सेवा में हमें बंझा कल्प तिलक वैष्णव चिन्ह समूह धारण करिए, अंगे हरिनामाक्षर लिखन निर्माल्य धारण, भगवाने सन्मुखे नित्य दंडवत प्रणाम, विग्रह दर्शन मात्र ग्रातोत्तम, विग्रह देखबे जे कोताते के केव नियास छे, नगर संकीर्तन इत्यादि होचे उठे दाड़िए ताके अभिवादन लीला सब बुली ताके स्मरण करते करते कृष्ण लीला स्मरण कर दे। ध्यान भगवाने से जे विग्रह तहा ध्यान तहा श्रीमद् भागवते बरहा पीड़म नटवर
ये सप्तव्रत मुनि जी स्तव करते 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 उनके हृदय में इस बात की स्फूर्ति हुई कि कृष्ण के लिए जो बाल गोपाल उनका जो यह रूप है, इस रूप की स्फूर्ति हमारे हृदय में होना और उनको अपने आंखों से देखना ये तो साधारण काम नहीं है, ये संभव पर नहीं है। यदि कृष्ण का कोई प्यारा भक्त हो तो ऐसा संभव हो सकता है उसकी कृपा से। सोचते सोचते सोचा ये उनका सबसे प्यारा भक्त कौन है। तो उन्होंने देखा कि जिस यशोदा मैया ने बांधा है वो यशोदा मैया उनकी सबसे प्रिय है। फिर और थोड़ा सा आगे बढ़े और कोई प्रिय है कि नहीं, तो कुछ तो देखा ये एकमात्र सुमति राधिका जी ही सर्वोत्तम प्रिया है कृष्ण की। इसलिए यदि वो कृपा की कटाक्ष कर दें और राधा जी के साथ में सेवा का तनिक भी गर्व मेरे प्रति हो जाए तो कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा सोच करके सबसे जो उनकी कृष्ण की जो प्रियतमा है उनके लिए यहाँ पर प्रार्थना के लिए हृदय में स्फूर्ति प्राप्त हुई और उसी के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो नमस्ते स्तु धाम्य स्फुरदीप्ति धाम्य त्वदीय उदर उदरायाथ विश्वस्य धाम्य नमो राधिकायै तदीय प्रियायै नमो अनंत लीलाय देवाय। स्फूर्ति होते होते उन्होंने सबसे पहले उस दाम अर्थात रज्जु की उन्होंने स्तुति की। नमस्तु नमस्ते अस्तु दाम में उस दाम के प्रति जो उदर के ऊपर में लटकी हुई उसको बांध रखा है मैं उसको प्रणाम करता हूं। स्फुरदीप्ति धाम में जो कि ब्रह्म इत्यादि जो है उन सबके भी आधार है ये ब्रह्मा जो है उनकी आधार है ज्योतिष स्वरूप ब्रह्म है उनकी ये आधार है। मानो ये कहने जा रहे हैं जैसे कि कृष्ण के चारों तरफ में ज्योति होती है अंग से ज्योति विकीर्ण होती है जैसे सूर्य के चंद्र के चारों तरफ से उसे किरणें निकलती है। इस प्रकार से कृष्ण के उदर के ऊपर में जो दाम है उससे जो किरणें निकलती हैं उद्भासित होती हैं वही तो ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म तत्व का आधार भी ये जो कि कृष्ण को चारों तरफ से घेर रखी है और ये दाम कैसी है जो कृष्ण को भी बंधन में ले आई है। ये केवल मात्र रस्सी का टुकड़ा ही नहीं है जिसका अंतर श्रीमद् भागवत ने वर्णन किया जिसका अंतर नहीं है बाहर नहीं है जिसका अंतर ही कोई नहीं है तो वो टिकेगी कहां रस्सी। कोई चीज तो रहनी चाहिए तो कोई वो अणु का भी परमाणु का भी से क्षुद्र है और उसके बाहर में कोई चीज नहीं सबके बाहर में वही है तो उसके ऊपर से रस्सी तो जा नहीं सकती। हाँ एक रस्सी है प्रेम की रज्जू वो उसको बांध सकती है। इसलिए पहले उस रस्सी को प्रणाम करते हैं जो कि इस लीला का ये मूल सूत्र है। कारण यदि यह रस्सी नहीं होती तो न तो कृष्ण बनते और न उनकी भक्त वत्सलता प्रसिद्ध होती और न ऐसी लीला। इसलिए इस रज्जु को मैं नमस्कार करता हूं। तदीय उदरायाथ विश्वस्य धाम्ने और मैं आपके उदर को भी नमस्कार करता हूं। उदर को इसलिए कि विश्वस्य धाम्ने विश्व का भी ये मूल है। विश्व माने चित जगत जीव जगत ये जड़ जगत विश्व ब्रह्मांड जितना यहाँ पर ब्रह्मांड को भी रख लिया जाए तो ये सब का आधार है। कैसे आधार जो सुधा मैया स्तनपान करा रही और पान करते 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 कृष्ण को जमधाई आई तो उसमें क्या देखा? एक दो ब्रह्मांड नहीं, कर्णाब दशाई में जितना कर्णाब समुद्र में कारण समुद्र में कारण वायु में जितने समुद्र में जितने ब्रह्मांड है शायद ऐसे ऐसे इतना कारण बारी सब उनके उदर में है, उससे भी अधिक विश्व ब्रह्मांड सब कृष्ण के उदर में है सबका। और कभी उन्होंने मट्टी खाई तो भी देखा समस्त उसको जरा खुद उनको ऐसे विश्व का ये धाम है यशोदा मैया ने फिर देखा, कभी इस विश्व को विराट रूप को देखा और भी किसी ने देखा? दुर्योधन ने भी देखा, कार्मोशुंडी ने भी देखा, राम के उदर में देखा, राम और कृष्ण एक ही, दुर्वासा ने उनके उदर में ये देखा विश्व ब्रह्मांड। दूसरी बात, उनके अंश के अंश के कला के विकला हैं गर्भ दशाई और उनसे कमल की डंडी निकली और उस कमल की डंडी से ब्रह्मा जी पैदा और ब्रह्मा जी ने ये सब को प्रकाश किया। किंतु ये निकली कहां से डंडी? उनके उदर से ही निकली, इसलिए उदर विश्व ब्रह्मांड का ये आधार स्वरूप है। तभी उदरा उदरा यथ विश्वस्य धाम नमोराधिकाय। अब नमोराधिकाय तभी अप्रियाय नमनं तदीदाय देवाय। राधिका जी को ये प्रणाम कर रहे हैं, तदी अप्रियाय, तदी अप्रियाय मैंने तदीय, तदीय मैंने कृष्ण की प्रिया, इसलिए तदीय प्रियाय का अर्थ ऐसा भी हो सकता है राधानी जी एकमात्र जिनकी अत्यंत प्रिय है, एक कृष्ण पर अधिक जो तो कृष्ण की प्रिया
तद वस्तु कृष्ण उनके प्रिय तभी
राधा जी के प्रिय कृष्ण है और एक है कृष्ण के ये प्रिय है, ये दोनों भाव होता है। इसमें कृष्ण पक्षीय और राधा पक्षीय हो जाएगा, दोनों एक ही तत्व है, दोनों में कोई अंतर नहीं, कभी भी अंतर मत देखना, तो भी एक वैशिष्ट है। दोनों में अच्छा कौन लगता है? कृष्ण के प्रिय राधा जी है ना राधा जी के प्रिय कृष्ण है? तटस्थ व्यक्ति के लिए दोनों अच्छे लगे, जो राधा पक्षी है नारायण प्रभु जी को आपको कौन है? हम लोग तो यही चाहते हैं कि कृष्ण की अत्यंत प्रियतमा है राधा जी, ये अच्छी बात है। तब राधा जी के वो बात ठीक, मदीशा नाथत्वे ब्रजबिपिन चंद्र ब्रजबनेश्वरी नाथत्वे ब्रजबिपिन चंद्र ललिता विशाखा शिक्षाली यत्ते ललित रति दत्ते मर कहते हैं वो कभी कभी बिल्व मंगल जी कृष्ण की बड़ी प्रशंसा करते हैं। राधा जी कृष्ण के चरणों के नख को की अर्चन कर रही हैं और उस अर्चन से उनको कैसा सुख प्राप्त होता है मानो स्वयंवर में वर्ण कर रही हैं। स्वयंवर रसम लभते जय श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया जयलाप कर लिया ने अब उनकी जय श्री पर शोभा पर मुग्ध हो गई कौन
श्रीमती सीता जी
मुग्ध हो गई आनंद उल्लास से भर गया उनकी मन की मुराद पूरी हो गई। अयोध्या जनकपुर की समस्त लोगों की मुराद एकदम पूरी हो गई। कितना आनंद हुआ इसका अनुमान नहीं जो आशा नहीं की जा रही थी। एक छोटे छोटे बच्चे रावण जिसको नहीं तोड़ सका इंद्र नहीं तोड़ सके जिस धनुष को उठा सके हजारों वीर मिल करके नहीं उठा सके सब पृथ्वी के वीर आकर के हार गए और एक छोटा सा बच्चा इतना सुंदर बच्चा और उसने धनुष को उठा करके और देखते देखते पलक झपते जय हुई। अब सीता जी के हाथ उठ नहीं रहे सखियां उनके हाथों को उठा करके धीरे धीरे गति से आ रही। अच्छा उस समय राजा जनक को कितनी प्रसन्नता हुई बाप को तो नहीं कहना चाहिए जी तुम गले में मारा था किंतु बाप से भी रहा नहीं गया बाप यार जल्दी से गले में मारा था तो सीता जी को ऐसे राज कृष्ण चंद्र जी कि चरणों की नख की शोभा इतनी अधिक है जो बिल्व मंगल से रहा नहीं गया उन्होंने अपने आराध्य देव के चरणों की वंदना करते हुए राधा जी को जयश्री बना करके उनके द्वारा उनके नखों की अर्चना करा रहे हैं उसमें उनको बड़ा प्रसन्न बात भी ठीक है कोई हर्ज नहीं है किंतु हम लोग तो चाहते हैं कि राधा जी के चरणों की नख की आभा को
नहीं आ रहे
ये कृष्ण चंद्र ही आरती उतारे सौ सौ बार तब तो और अच्छा तो तभी अपनी आए राधिका जी कृष्ण की बड़ी प्रिया प्राण से भी प्रिय है यही अर्थ ठीक है किंतु ये गड़बड़ी ये कुछ मालूम होते हैं कहना तो नहीं चाहिए किंतु राधी नहीं जाता कहे बिना ये ऐश्वर्य मिश्रित दास्य भक्त है ये इतनी वंदना कर रहे हैं राधिका इत्यादि के द्वारा उसके भाव मिला करके अरे राधिका जी इनकी प्रिय है इसलिए राधा जी कह देंगे हमारी सिफारिश कर देंगे तो ये प्रभु प्रसन्न हो जाए इसलिए ऐसा कह रहे हैं इनको जरूरत क्या है इनके आराध्य देव कौन है बाल गोपाल है अब वही रूप इनके हृदय में स्फूर्ति हो यही इसी रूप की वो आराधना करें इसलिए उनको इस काम को पूरा करने के लिए अभिलाषा पूरा करने के लिए जरूरत है राधा जी और रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या जरूरत है रूप गोस्वामी को क्या जरूरत है उनको जरूरत यह है कि राधा जी की कृपा के लिए हमको ऐसा सिफारिश लाना चाहिए जो राधा जी हमारी सिफारिश को सुन सके, हमारी प्रार्थना सुन सके। अब ये हमको खोजना है कि राधा जी किसकी बात मान सकती है। तो उसके लिए कहते हैं श्याम सिंह सुंदर
श्रीखंड
शेखर स्मेर हास मुरली मनोहर आराधिका रसिक मान कृपा निधे प्रिया चरण करी। ये राधा जी के अधिक भाव हे श्याम सुंदर, कभी किसी सखी के ऊपर में कृष्ण बड़े प्रसन्न भए, बहुत जोर प्रसन्न हो, उन्होंने उसको बीची में पकड़ लिया, कहा आज तुम्हार जो कुछ मांगेगी वही दे देंगे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। प्रभु यदि प्रसन्न है तो मैं यही चाहती हूँ। हे श्याम सुंदर शिखंड शेखर, शिखंड मैंने
मोर
ऊपर धारण की, स्मेर हास मुरली मनोहर मंद मंद मुस्कान के साथ होठों पर मुरली धारण किए हुए मुरली मनोहर राधिका रसिक मां कृपा निधे कृपा निधे स्वप्रिया चरण दूर करी प्राणनाथ विषभांग नंदिनी। आप तो विषभांग नंदिनी के प्राणनाथ है ना, अपना कोई संबंध नहीं आप बता है, प्राणनाथ विश्वानंदनी के प्राणनाथ आप हैं, प्राणनाथ विश्वानंदनी श्री मुखाब्ज लोल सट पद। और कृष्ण कैसे हैं, कहीं कुमुदिनी या कुमुद या पद्मा भौरे को खोजने के लिए नहीं जाता, भौरा ही खोजता है भ्रमर, कभी भी पद्मा या पद्मिनी कमल कहीं भी अपने स्थान से तसमस नहीं हो, जिसकी गरज हो हुआ है इसलिए वो अपने स्थान पर रहता है, अपने सुगंध से अपने सौंदर्य से अपनी कोमलता से जो उसके तरफ में देखेगा उसी को आकर्षित कर लेता है। तो कमलनी अपने स्थान पर है, कमल अपने स्थान पर है, और सबसे सुंदर भ्रमर उसके ऊपर में बढ़ तो क्या कहा
मुखाब्ज सतपद
मुखाब्ज लोल सतपद, सतपद की भांति भौरे की भांति लोल माने क्या
लाल लालाई,
लोल माने होता है लोभी अत्यंत लोग, अब उसको कौन सी दिशा है क्या करना है नहीं करना है कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया उस लोभ के मारे, जैसे किसी चोर को किसी चीज का लोभ हो गया है तो वो जेल से नहीं डरता, किसी के मार से भी सब कुछ सह लेता है, ऐसे ये लोल हो गया है, प्रमत्त हो गया है। उनके मुख रूपी कमल के लिए सतपद की भांति जो लोल अत्यंत हो गया है, मना करने पर भी नहीं मानता, घूम घूम करके वही आता है, यहां तक कि उसके प्रेम में उसके पंखुड़ियों में बंद हो जाता, दिन रात का ध्यान नहीं रहता, शाम हो गई अब उसके वो बंद होने वाले हैं पंखुड़ी, और उसको ज्ञान उसी में पड़ा हुआ रहता है और वो बंद हो जाता है। ऐसा है कि उसको लकड़ी को काट करके छेद देता है, किंतु ऐसे कोमल पंखुड़ियों को
जो कि एक सेकंड में उसको छेदा जा सकता था। प्रेम के वशीभूत होकर के बंद रहना जेल में पसंद करता है, उसको काट करके निकलता नहीं है, रात भर प्रतीक्षा करता रह जाता है। ऐसे आप राधिका के मुख कमल के सर्पद के समान हैं। मां कृपा निधे
राधिका पद
तले कृति स्थिति त्वाम भजेंद्र रसिकेंद्र शेखर। हे रसिकेंद्र शेखर, मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, राधिका जी के पद के तल में मेरी स्थिति दीजिए, उनके बिना मैं न रह सकूं, बस यही प्रार्थना है। इसके बाद में कष्ट मोहन तवापि बल्लभ संविधाय दशने तृणम। दांतों के नीचे तीर्ण धारण करके अत्यंत दीनहीन हो करके, जैसे तीन होता है, संविधाय दशने तीनम प्रार्थये ब्रज महेंद्र नंदन अस्तु मोहन तवापि बल्लवा मदीश्वरी जन्म जन्मनी मदीश्वरी। जन्म जन्म में अस्तु मोहन तवापि बल्लवा, हे ब्रजेंद्र महेंद्र नंदन, आपकी ये जो प्रिया श्रीमती राधिका है, जन्म जन्म में हमारी प्रिया बने, मेरी आराध्या बने, मैं उनके कृपा के बिना और कुछ नहीं चाहता। ये राधा पक्ष है। चार प्रकार की सखियां होती हैं। सखी
सपक्ष
विपक्ष
तटस्थ सुहृद पक्ष
और सुहृद पक्ष, ये चार पक्ष होते हैं। ये स्वपक्ष की बातें हैं, एक विपक्ष की बातें होती है, एक तटस्थ होता है, दोनों तरफ तटस्थ होकर के विचार करता है, कभी इधर आ गया कभी उधर आ गया, कभी राधा का पक्ष कभी कृष्ण का पक्ष, और कोई होता है सुहृद पक्ष, जैसे श्यामलाल